ओम शांति। आप सब ज्ञान सरोवर के हॉल में बैठे हैं। मान लीजिए कि आप सब एक गैस का गुब्बारा हैं। अच्छा, और आप उड़ना चाहते हैं, तो अगर आपका धागा मंजू बहन छोड़ दे तो आप उड़कर कहाँ जाएंगे? आप हॉल की छत पर लग जाएंगे, उसके ऊपर तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ी छत है। अगर छत ना होती तो आप ऊपर चले जाते। यही बात उड़ती कला पर लागू होती है। कैसे? कि जो सड़क के ऊपर ट्रैफिक चलता है, मोटर चलती है, कार चलती है, कई वाहन चलते हैं, तो आप अगर सामने से कोई दूसरा ट्रैफिक आ रहा है, या आगे भीड़ भाड़ है, या पीछे से किसी का हॉर्न बज रहा है, तो आप अपने वाहन को मोड़ सकते हैं, बाएं घुमाकर, दाएं घुमाकर, तेज करके, स्लो करके आप उसको एडजस्ट कर सके। तो किसी विमान में उड़ना हो, या समझिए आप स्वयं ही कोई मशीन पीठ पर लगाकर आकाश में उड़ रहे हैं। अब उस उड़ती कला में आप ऊपर को जा रहे हैं, रास्ते में आप रुक जाएं तो उसकी संभावना नहीं है, और अगर बहुत रुक गए तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन बीच में रुकने का मार्जिन नहीं होता। इसी प्रकार से उड़ती कला के लिए जो बाबा ने मंत्र दिया हुआ है, हमको बहुत आसान मंत्र है कि शुभ भावना शुभ कामना रखो। और ये मंत्र बोलने का नहीं है, मन में रटने का भी नहीं है, बस इस मंत्र के आधार पर ही आप उड़ते हैं। और साथ में कान में कोई कह दे कि जो ही आपने इस मंत्र को भूला, जो ही इसकी विस्मृति हुई, आपकी उड़ती कला समाप्त हो जाएगी, अर्थात गैस के गुब्बारे में पिन लग जाएगा, और फिर आप कहाँ जाएंगे? और फिर जब आप नीचे आ जाएंगे तो बिना गैस का गुब्बारा कैसे लगता है? मुरझाया हुआ लगता है। तो यही दशा आत्मा की हो जाती है। इसलिए बाबा ने उड़ती कला से पहले चढ़ती कला का ज्ञान दिया, चढ़ती कला सिखाई, और चढ़ती कला से पहले बाबा को बहुत स्टेजेस से पास कराया है। पहले बाबा कहता था तेज 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 कदम बढ़ाओ, फिर बाबा ने कहा तेज बढ़ने का समय गया, अब दौड़ो, गैलप करो, फिर बाबा ने कहा हाई जंप दो। ऐसे करते करते बाबा ने कहा कि अंत में जब जाने का समय होगा तो तुम्हारी गति और विधि, गति कहते हैं स्पीड को और विधि कहते हैं तरीके को, तो आपका गति और विधि अलग होनी चाहिए, वरना आप कहेंगे हम चल तो रहे हैं लेकिन दौड़ तो रहे हैं लेकिन क्या हम ऑर्डर मिलने पर अचानक अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे? क्या आंसर है आपका? नहीं। थोड़ा समय बोलने के बाद मैं आपसे ही प्रश्न इनवाइट करूंगा कि आपको क्या कारण महसूस होता है उड़ती कला में सदा ना रहने का। उड़ती कला में तो सब रहते ही हैं, बीच बीच में रहते हैं लेकिन सदा नहीं रहते हैं। कभी नहीं रहते हैं जब, तो उस वक्त चेकिंग करते हैं, फिर उड़ने लग जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर रुक जाते हैं, फिर चेकिंग करते हैं। तो ये खेल अंत समय में नहीं चलेगा, क्योंकि अंत समय में अगर कोई विजयी, सदा विजयी नहीं रहेगा, युद्ध करेगा अपने साथ, तो आप जानते हैं कि कौन से युग में युद्ध करने वाले जाते हैं, अर्थात वो पीछे रह जाते हैं। अब आप सोचिए कि क्या कारण है, हर एक चाहते हैं हम उड़ती कला में जाएं, और बाबा कहता है उड़ती कला तो बहुत ही आसान है, क्योंकि उड़ती कला में कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। परम धाम की यात्रा करने वाले या सूक्ष्म लोक की यात्रा करने वाले दुनिया की 880 करोड़ आत्माओं में से कितने हैं? शायद दिल्ली या जहां से आप आए हैं वहां की सड़कों पर भी ज्यादा भीड़ होती होगी, जितना ऊपर जाने में बहुत थोड़ी सी आत्माएं उड़ के जा रही हैं। और जब तक कोई आत्मा टेढ़ी ना हो जाए, अन्य आत्माओं से टकराव करते हुए उनको हिट लगाते हुए इधर ना चली जाए, जैसे दीपावली के दिन कई बार हम आतिशबाजी चलाते हैं, अगर उसका डंडा सीधा ना हो तो कई बार वो आपके कपड़ों की तरफ आती है, कभी कभी घर की तरफ चली जाती है। तब तक सीधा ही उड़ने की बात है। वो कहते हैं कि बच्चे आखिरकार उड़ती कला के लिए जो मैंने मंत्र दिया हुआ है, शुभ भावना शुभ कामना, उसमें उसको ढील क्यों आ जाती है? अगर शुभ भावना शुभ कामना दें भी और सोच सोच कर दें, अच्छा दूं ना दूं, इसको दूं कितनी दूं, तो फिर आपकी स्पीड भी उड़ती कला की नहीं रहती, जैसे कोई हवाई जहाज सड़क पे चल रहा हो। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सोचना है कि ऐसा क्यों होता है कि हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो मैं समझता हूं सभी ब्राह्मणों को बाबा ने बताया हुआ है इसका कारण। ये सबसे बड़ा कारण इसका क्या है, जिसको बाबा ने कहा है हद। जैसे छत की हद हो तो गुब्बारा ऊपर नहीं उड़ सकता, ऐसे ही हमारे मन में किसी भी प्रकार की हद हो, अर्थात पहले हमारा संकल्प हद आएगी, संकल्प के बाद नेचुरली वाचा और कर्मना भी आ जाएगी। तो संकल्प में हद या वृत्त में हद आने से क्या होता है? बाबा कहता है पहले आप सोचो कि आपको जो प्रहलाद मिलने वाली है वो हद की है या बेहद की है। हम सब जानते हैं हमारी प्रहलाद बेहद की विश्व बादशाही है। दूसरा ये सोचो मेरी प्रद जो मिलने वाली है वो अविनाशी है और हद मैंने विनाशी, इसलिए मैंने अविनाशी प्रारब्ध और बेहद की विश्व की प्रारब्ध, विश्व से ज्यादा भी कहें तो तीनों लोकों की प्रारब्ध मुझे अपने अंदर इस समय धारण करनी है। तो ऐसी बड़ी प्रारब्ध के लिए हद नहीं चलती। जैसे मान लो बाबा सारे प्रारब्ध को एक शब्द में कहते हैं खुशी, कि अगर आप सदा खुश हैं तो आप प्रारब्ध आपकी बढ़ रही है, आप प्रारब्ध को पाए हुए हैं, आप ठीक रास्ते पर हैं। ठीक है, कौन चाहता है मैं खुश ना रहूं और सदा खुश ना रहूं? बाबा ने तो हमको फिक्र से फारग कल की मुरली में कहा है, बेफिक्र बादशाह बहुत मुरलियों में कहा है, बेगमपुर के बादशाह बहुत मुरलियों में कहा। और हम जानते हैं कि बाबा का ज्ञान इतना जादुई ज्ञान है कि हमें किसी बात की चिंता करने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा गीत भी है कि हमारा भगवान साथ है तो चिंता काहे की है। हमें आगे का ज्ञान है, पीछे का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, हिस्ट्री रिपीट का ज्ञान है, अनेक बार पाठ बजाया है, एक्यूरेट है सब चीज। तो चिंता, मैंने किसी को ज्ञान ना हो उसको चिंता होती है, किसी ने किसी व्यक्ति नए व्यक्ति के घर में जाना हो तो थोड़ा संकल्प चलता है कि मैं ठीक जगह जा रहा हूँ या नहीं, बार बार पूछता है। अपने घर में जहाँ अनेक बार गया हो वहाँ उसको सोचने नहीं पड़ता, अपने आप उसके कदम जाते हैं। पहली बात, खुशी हमें सदा रहनी चाहिए, अगर नहीं रहती तो कारण क्या हुआ। तो आप देखेंगे, पहले अपने मन से पूछें, हमें सदा काल की खुशी चाहिए या कभी कभी की खुशी चाहिए। कभी कभी की विनाशी खुशी तो इस दुनिया में भी मिल जाती है। मान लो कोई कल्चरल प्रोग्राम करता बड़ा खुश हो जाता है, जो उसकी विशेषता है उसको करके दिखाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न खुशी का नहीं है, सदा काल की निरंतर खुशी का है, जो जरा भी कम ना हो, बढ़ती जाए। अब आप सोचिए कि ऐसी खुशी आपको आज बाबा आपके हॉल में आकर कहे कि बच्चों मैं तुम सबको खुशी देने को तैयार हूँ, सदा की खुशी देने को तैयार हूँ, पहले बताओ इसको रखोगे कहाँ। तो आपका क्या उत्तर होगा, कहाँ रखेंगे आप? सदा की खुशी को आप शरीर में रखेंगे, शरीर तो विनाशी है तो विनाशी हो जाएगी, तो जरूर अविनाशी चीज में ही रखेंगे, आत्मा में ही रखेंगे। इसलिए जब तक हम अपने आप को हर वक्त अविनाशी आत्मा नहीं समझते तो हम खुशी कैसे रख सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हर बात में पहले अपना नफा नुकसान सोचिए, वही बात कि अविनाशी हो और वैश्विक हो, हमारा संकल्प भी अविनाशी हो वैश्विक हो, यानी सबके कल्याण के लिए हो। लेकिन हम करते क्या हैं? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि बात तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई जगह तो मैं रहता हूँ, कोई ना कोई एरिया तो मेरी जिम्मेवारी का है। ठीक है, हम उसका ही सोचने लग जाते हैं, अर्थात हम विश्व कल्याणकारी के बच्चे, विश्व कल्याणकारी मास्टर, विश्व कल्याणकारी सारे विश्व के कल्याण का ना सोचकर अपने हद का कल्याण का सोचने लग जाते हैं। और हम शुभ चिंतक भी बनते हैं, किसके? अपने हद के कनेक्शन वालों का। तो जब हम वो बनते हैं तो नेचुरली हमारा बेहद की जो प्राप्ति है और बेहद की जो वो खुशी है वो लिमिट में आ जाती है। तो इसलिए पहला कारण तो ये होता है कि हम हद में आते हैं। तो बाबा कहते हैं रहोगे तो तुम एक स्थान पर ही, लेकिन जिस स्थान पर भी रहोगे तुम्हारा जो संकल्प है, तुम्हारा जो कर्म है वो विश्व कल्याण के हिसाब से होना चाहिए। अर्थात मान लो शुभ भावना शुभ कामना ही देनी है, मनसा सेवा ही करनी है, तो हम सारे विश्व की मनसा सेवा करें, सारे विश्व का भला सोचें। क्योंकि अगर सारा विश्व सतोगुणी नहीं बनेगा, आधा विश्व बन जाएगा तो बाकी आधे विश्व वाले उनको रहने नहीं देंगे। इसलिए अंधेरा और उजाला इकट्ठे नहीं रह सकते, बुराई और अच्छाई इकट्ठी नहीं रह सकती, सुख और दुख इकट्ठे नहीं रह सकते। तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें सारे विश्व के कल्याण का सोचना है, तो इससे हमारी हद की वृत्ति टूट जाएगी। एक और बात आप देखिए कि छोटा जब बड़े से मिलता है, ज्वाइन कर जाता है, तो बड़ा बन जाता है। लेकिन छोटा अगर बड़े से अलग हो जाता है तो छोटा हो जाता है। आज आप देखेंगे हम सबको कितना नाज है, हम कितने नशे में रहते हैं, कितना सीना तान के चलते हैं अपनी विश्वविद्यालय का नाम लेते ही। अरे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ये तो सारे विश्व में है, सारे देशों में है, सारी भाषाओं वाले लोगों में है, है कोई ऐसा संस्था दुनिया में? कारण क्या कि चाहे मेरा गीता पाठशाला ही है, चाहे मेरा सब सेंटर ही है, लेकिन मैं एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा हूँ। जैसे एक बूंद पानी गिलास में मिलकर के गिलास का पानी कहलाता है, गिलास का पानी बढ़ते जाओ नदी का पानी कहलाता है, और फिर वो सागर के पानी उसी बूंद के हिसाब से कहलाता है। तो कभी कभी हम अपना दृष्टिकोण हद का कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए दादी गुलजार का स्तंभ बनना है, हम सबको कहा गया है कि अपने अपने क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार उसके लिए कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करो। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर मैं सोच, तो मान लो मैं किसी जोन के सेंटर है, मेरा जोन वाले कहते हैं कि सारे जने पैसा अपना जोन में दे दो, हम इकट्ठा करके यज्ञ में भेजेंगे, अमाउंट भी ज्यादा लगेगा और जोन की शोभा होगी। जो इस बात को समझते हैं कि मैं जोन को दे देता हूँ, जोन के द्वारा ही हेडक्वार्टर में जाएगा, नाम तो मेरा लिस्ट में आएगा ही कि मैंने ये दिया, तो हम बड़े हो गए। अगर हम सोचे मन में कि नहीं नहीं मैं दूं तो मेरा नाम वहां होगा, मैंने दिया है, तो फिर हम छोटे हो गए। इस प्रकार से, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इस प्रकार से हमारा बाबा कहता है विश्व का राज्य करना है, वैश्विक दृष्टिकोण रखना है, उड़ती कला में जाना है। आप जानते हैं उड़ती कला में, आज आप उड़ती कला में जाएंगे, मान लीजिए आप अमेरिका जाते हैं, तो आपको 10 देशों से गुजरना पड़ेगा और हर एक प्रकार के वीसा लेने पड़ेंगे, अपनी चेकिंग करानी पड़ेगी। लेकिन अगर सारी दुनिया एक हो, जैसे पंछी है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान बगैर वीसा के जा सकता है। वही एग्जाम्पल हम अपने पर लगाएं कि हम बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं, तो इसलिए हमें हमेशा अनलिमिटेड दृष्टिकोण रखना चाहिए, तब हम उड़ती कला में जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम अमृत वेले रोज संकल्प करते हैं कि मनसा सेवा करनी है, दुखियों के दुख हरने हैं, भटकते हुए भूलों को रास्ता दिखाना है, सब करते हैं, और अकेले तो दिखा नहीं सकते। बाबा की से मदद लेकर, बाबा को साथ रख के, बाबा से लेकर उनको देना है। फिर भी बीच में आप देखेंगे क्या आ जाएगा, किसी ना किसी प्रकार की लिमिट आ जाएगी। एक बात तो यह है, और दूसरे बाबा कहते हैं कि हम क्या सोचते हैं, जिसको बाबा कहते हैं समय की, जो संगम का समय है, जो ही उड़ती कला का समय है, उसको हम याद रखते हुए भी विस्मृति में आ जाते हैं कि संगम समय उड़ती कला का समय है, हमें हर समय ही उड़ती कला में रहना है। उड़ती कला ऐसी चीज नहीं है कि आप थोड़ा उड़ करके शाम को नीचे आ जाओ अपने सेंटर पर, अगले दिन फिर उड़ना शुरू कर दो। उड़ती कला का मतलब ही होता है आगे से आगे उड़ते जाना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम फिर क्या सोचते हैं, थोड़ा सा दूसरे को देख लेते हैं, अच्छा ये भी तो धीरे धीरे चल रहा है, तो पूछा जाए, बाबा पूछे तो हम जैसे वो शांति का दाता कौन है, उसका चित्र होता है ना, अगले दूसरे की तरफ इशारा करता है, वो दूसरे की तरफ, हम क्या करते हैं, देखिए हम तो उड़ रहे थे लेकिन ये साथ वाला को देख करके ये मेरे रास्ते में विघ्न डाल रहा था, इसलिए हम थोड़ा नीचे आ गए हैं, या इसको देखकर जैसे ये उड़ रहा था उसके साथ मैं भी उड़ रहा था। कई ब्राह्मण आप देखेंगे जाने अनजाने में अपनी जोड़ी बना लेते हैं या एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, उसी को अपनी दुनिया समझते हैं, बजाय श्री बाबा ही मेरा संसार है, संगम युग ही मेरा परिवार है, तो फिर क्या होता है, वो छोटी सी टोली आपस में ही विचार विमर्श करके तो वो अपने हिसाब से चलती है, तो नतीजा क्या होता है, वो लिमिट में आ जाते हैं, उड़ती कला में नहीं आते। तो कई कारण हम फिर बनाते हैं दूसरे इसने ऐसे किया इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब भगवान कहता है कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख के दूसरे करें, या जैसे दूसरे करेंगे उसको देखकर मैं करूंगा। कई थोड़े से आलस में आ जाते हैं, अलबेलेपन में आ जाते हैं, महारथी भी तो ऐसे करते हैं, अभी कौन बना है। फिर कह देते हैं अगर हम पूरा बन गए तो हमें सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा आदि आदि। बहुत संगम योग बहुत अच्छा है, बहुत सारे कारण बता करके भी हम अपनी उठती कला को ढीला कर लेते हैं। अब बाबा कहते हैं कि देखिए, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना। तो शुभ चिंतन अपने लिए होता है, उसके लिए हमें हर वक्त मनन शक्ति यूज करनी पड़ती है। जैसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए। फूड कितना भी अच्छा हो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो शक्ति नहीं आती है। इसी प्रकार से जो शुभ चिंतन करने वाला है वही शुभ चिंतन करने वाला है, तो मनन अपनी मनन शक्ति को यूज करेगा। और जो पर दूसरे के लिए शुभ भावना रखता है उसको अपनी सेवा की शक्ति को देखना पड़ेगा कि मैं सेवा निर्विघ्न कर रहा हूँ। इसलिए सार यही बैठता है कि उड़ती कला का समय आ गया है, और उड़ती कला के समय का एक ही यंत्र है, वो ये है सदा और सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना। उसमें सबसे पहले तो अपने लिए शुभ भावना और शुभ कामना हो। अगर हम अपने लिए ही ढीले हैं, चलो अमृत वेला क्या करना है, अच्छा आज का लॉकडाउन के दिन है, आगे तो टीचर्स और उनकी क्लास सामने आती थी, टीचर्स क्लास को चेतावनी देते थे, क्लास टीचर को देखती थी, डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टेक्ट होता था। अब तो जैसे इम्तिहान से पहले छुट्टियां होती हैं, तो बाबा ने ऐसा पीरियड दे दिया है कि हर एक अपने अपने रंग को, अंदर के रंग को प्रकट कर रहा है। तो बाबा ऊपर से देखते रहते हैं कि मेरे बच्चों की असली जो सच्ची सेवा है वो कहाँ तक है, और नियमों का पालन जब कोई नहीं देख रहा कहाँ तक करते हैं, आपस में क्या बातचीत करते हैं, खान पान का क्या परहेज रखते हैं। तो बाबा कहता है कि उससे उनका असली रूप सामने आ जाता है, क्योंकि जब क्लास में बैठते हैं तो टीचर का ध्यान रहता है, सहपाठियों का ध्यान रहता है कि देखो सारे मुझे देख रहे हैं। तो ना चाहते हो भी अगर सोना भी चाहते हो तो आंखें खोल के बैठते हैं, नहीं तो साथ वाला थोड़ा इशारा करेगा, अरे भाई सो क्यों रहा। लेकिन जब फ्रीडम मिल जाती है तब असली पता लगता है कि सुबह से सायं तक कैसे कैसे ब्राह्मण बिहेव कर रहे हैं, स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं, टीचर कैसे बिहेव कर रहे हैं, मर्यादाओं का कितना पालन कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि बाबा ये जो उठती कला है, ये जो शुभ भावना शुभ कामना है, इसमें हर एक मर्यादा का पालन मदद करता है। अगर किसी रॉकेट को दूर भेजना हो उसकी हर चीज को डबल टेस्ट किया जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार का भी लीकेज ना हो। यहाँ से तो उड़ जाएगा, ऊपर जाके बहुत भयानक एक्सीडेंट कर सकता है। इसी प्रकार से हमें तो समय बाबा ने ये बीट इम्तिहान से पहले का दिया है, फ्रीडम दे दी है कि बच्चे अपनी कमी कमजोरी को देखकर ठीक करो। अब हमें बताया गया है कि देखो तीन कारण होते हैं जो शुभ चिंतन के रास्ते में विघ्न डालते हैं। हम सब जानते हैं, आप सब टीचर हैं, एक तो परचिंतन होता, अपनी फिक्र कम दूसरे की फिक्र ज्यादा, वो ऐसे क्यों नहीं करता, वो ऐसे क्यों करता है, उसको ऐसे करना चाहिए या उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि परचिंतन में यानी अपना शुभ चिंतन तो गया, दूसरे के लिए कहेंगे कि ऐसे क्यों करता है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो डिसर्विस हो रही है। अच्छा, और फिर अपने लिए कहेंगे मैं करना तो चाहता हूँ मेरे से हो नहीं जा, बाबा तो कहता है पर करना तो चाहता हूँ पर होता नहीं, मुश्किल है। और या फिर कहेंगे करना तो नहीं चाहता था पर हो गया, क्रोध आ गया। अब बाबा कहते एक चावल देखने से सारे पतीले का पता लग जाता है। अगर क्रोध है या अंदर चिड़चिड़ापन है, है ना। बाबा कहते हैं कि कई बार ऊपर से क्रोध नहीं दिखाते लेकिन अंदर चिड़चिड़ापन आता है, ये व्यक्ति जल्दी से चला जाए, ये उठ जाए, तो बाबा कहते हैं ये भी एक रूप है क्रोध का, या मूड बनाना, सब बातें आप जानते हैं, ईर्ष्या करना। तो ये परचिंतन जो है, इस परचिंतन करने वाला तो उड़ेगा ही नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं परदर्शन, वो भी बहुत ही अच्छी चीज है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की ज्ञान लेते लेते ज्ञान की शक्ति तेज हो गई है, योग की शक्ति तेज हो गई है, धारणा की शक्ति भी तेज हो गई है। अब जब धारण करते हैं तो बाबा ने कहा हुआ गुण धारण करो, गुण धारण करना भूल के धारण कर लेते हैं, तो सामने वाले के गुण और अवगुण दोनों अंदर ले आते हैं, उसकी कमी कमजोरियां अंदर ले आते हैं, और क्योंकि कमी कमजोरियों के देखने का युग है, तो उस वक्त फिर क्या होता है कि कमी कमजोरियां उसके गुणों को तो भुला देती हैं। एक एक व्यक्ति की अगर आप 10 व्यक्तियों की भी कमी कमजोरियों को धारण कर लोगे तो आपके मन का क्या हाल होगा, मनमना भव का क्या हाल होगा, और वो जो मंत्र है शुभ चिंतक का जिससे आप उड़ती कला में जाते हैं उसका क्या होगा। इसलिए फिर पर मत भी होती है कि यानी बजाय श्री मत पे चलने के लिए या तो अपने मन की मेरी अकल सबसे ज्यादा है, हर चीज को हम अपनी बुद्धि से देखते हैं। बाबा कहते हैं पारसनाथ और पारसनाथ ने दूसरे को आयरन को भी लोहे को भी पारस बना देते हैं, और हम अपनी लोहे वाली बुद्धि से जो भी पूरी पारस नहीं बनी है उससे ज्ञान को भी जज करते हैं, सिचुएशन को भी जज करते हैं, दूसरों को भी जज करते हैं। कहते हैं नैया मेरी बाबा के हवाले है, लेकिन फिर नैया को खुद भी चलाना चाहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया आदि आदि। तो बाबा कहते हैं ये सारी रुकावटें हैं, इसलिए सो की बजाय पर को देखने लग जाते हैं। तब बाबा कहते हैं शुभ, कुछ भी शुभ हो तो पहले अपने से शुरू करना। हम सुबह से शाम तक, हमें बाबा ने इतना ज्ञान दिया हुआ है कि हम सुबह से शाम तक शुभ ही शुभ सोचने का मौका है। बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, कोई भी बाबा स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। बाबा सारी तमोगुणी दुनिया को हीरे तुल्य बना देता है, सोने तुल्य तो बाद में बनेंगे, कौन सी शक्ति से? संकल्प की शक्ति से। बाबा के पास ना तो बोलने के लिए मुख है, ना बाबा के पास शरीर है, तो बाबा इस वक्त सबसे ज्यादा सेवा जो तेज है वो संकल्प शक्ति की सेवा है, जिसको हम मनसा सेवा कहते हैं। तो बाबा ने संकल्प शक्ति से सारे विदेशियों को जन्म दे दिया। बाबा बताते थे कि मैं आपका आवाहन किया करता हूं, बाबा ने संकल्प की शक्ति से किसी को बाबा ने डंडा तो नहीं मारा, लपड़ तो नहीं मारा, क्रोध से तो नहीं बोला, ले बड़े बड़े विघ्न आए, ऐसा नहीं है, प्रकृति के विघ्न भी आए, माया के विघ्न भी आए, सरकारी तौर पे विघ्न भी आए, अनेक विघ्न आए, समाज से भी आए, बाबा से ज्यादा विघ्न तो हमें नहीं आए। तो बाबा ने संकल्प शक्ति से प्रकृति को भी जीत लिया, हर चीज को जीत लिया, अर्थात शुभ शुभ शुभ। संकल्प शक्ति क्या थी? शुभ संकल्प, शुभ ही शुभ, क्योंकि सतयुग में शुभ ही होता है। और हर व्यक्ति आजकल भी अपने घर के बाहर जो गृहस्थी लोग हैं एक स्वस्तिका बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द लिख देते हैं शुभम लाभम, कि शुभ से ही लाभ है, लेकिन अंदर होता है लोभम, तो शुभ और लोभ चलते नहीं। तो अगर हम मान लो सेवा भी करते हैं और उसमें थोड़ा सा मैंपन आ जाए कि मेरी सेवा है, मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया है, अगर आपसे पहले कोई कह दे कि दूसरे को बनाना है, वो बीमार है, अच्छा वो बीमार है इसलिए मुझे बना रहे हैं, मैंने नहीं बनना, तो बाबा कहते इससे क्या पता लगता है कि ये जो मैं है, कि मैं का आदर और निरादर महसूस करना, जिसको बाबा कहते किसी भी प्रकार की फीलिंग में आना, तो वो जो है वो उससे पता लगता है कि सूक्ष्म में मेरे अंदर मैंपन है। अब बाबा कहता है आपका है क्या कि आप अपनी शक्ति से देवता बन सकते हो, क्या आप अपनी शक्ति से फरिश्ता बन सकते हो, अपनी शक्ति से तो आप ब्राह्मण भी नहीं बन सकते हो। इसलिए बाबा कहता है कि करावन हार को भूलकर कि मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे, मेरी खुशकिस्मती है बाबा ने मुझे टीचर बनाया, बाबा ने मुझे मौका दिया, उस जगह को मैं प्रफुल्लित करूं। अब बाबा कहते हैं वाचा सेवा में भी अगर आपने ग्राउंड तैयार नहीं की, सख्त धरती में बीज डाल दिया तो बीज उगता नहीं है। वाचा सेवा में भी पहले आप उस आत्मा की धरती तैयार करो, उसके लिए भी आपको शुभ भावना शुभ कामना रखनी पड़ेगी। शुभ भावना शुभ कामना रखने से नेचुरली वो आत्मा जो है अगर आपसे नहीं भी सुनना चाहती हो, स्नेह के वश शुभ भावना शुभ कामना से स्नेह पैदा होता है, तो स्नेह से उसकी छूने की इच्छा होगी, तो जो भाई सेवा भी करोगे वो सफल हो जाएगी। शुभ भावना शुभ कामना अनेकों को आपके स्नेही सहयोगी बनाएगा, आपको शक्ति प्रदान करेगा, और अगर आप काटते जाओगे तो इसके बगैर मेरा क्या चलता है, ये नहीं होगा तो मैं सेवा ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सबसे अच्छी सेवा करता हूँ। करते 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 हम अकेले होते जाते हैं, और फिर इतने अकेले होते जाते हैं कि हमारे मन और बुद्धि भी आपस में अलग हो जाते हैं। मन कहता है अगर बुद्धि को मैं कुछ काम ही ना दूं तो बुद्धि क्या करेगी, और बुद्धि कहती है कि मन तू जो भी संकल्प करता है मैं उसके ऊपर जज ठीक नहीं करूंगी तो तेरा नुकसान हो जाएगा। हर एक अपने को बड़ा समझने लग जाए, सहयोग ना दे तो व्यक्ति के अंदर ही द्वंद्व पैदा हो जाता है, मन उस तरफ घसीटता है बुद्धि उस तरफ फेंकती है। इसलिए जोड़ना यही शुभ भावना शुभ कामना का फल है, और अलग होना दूर होना ये शुभ भावना शुभ कामना ना होने के कारण होता है। कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी सुविधाएं हो, सेंटर में कितने भी साधन हो, लेकिन अगर हम इस यंत्र को यूज नहीं करते तो उड़ती कला हो ही नहीं सकती, क्योंकि उड़ती कला वाला जो है वो देने वाला होता है, क्योंकि देते 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 ही देवता बनते हैं। हर देने वाले को देवता कहते हैं, और अगर हम लेने वाले हो गए, किसी के अवगुणी धारण करने वाले हो गए, लोगों की बुराइयां इकट्ठे करने वाले हो गए, तो हमारी उड़ती कला तो हो ही नहीं सकती। ग्राउंड पर ही जैसे दिवाली के दिन भी किसी उड़ने वाली आतिशबाजी को अगर वो अंदर से गड़बड़ है तो ग्राउंड पर ही घूमती रहती है, इसी प्रकार से मन में हम सोचते रहेंगे मुझे उड़ती कला में जाना है, मुझे तो परम धाम जाना है, एक संकल्प से परम धाम जाना है, एक सेकंड से जाना है, ऊंचे से ऊंचा मेरा परम धाम है, अच्छा फिर मुझे वहां से सूक्ष्म लोक में आना है। आप करके देख लीजिए, थोड़ी देर बाद आप कहीं के कहीं पहुंचे होंगे। जैसे बाबा कहता है बृहस्पति की दशा की जगह तो और ही दशा आई हुई होगी। इसलिए जो तैयारी हुई जाती है ऊपर से ऊपर जब चढ़ते हैं तो फिर नीचे का ध्यान नहीं रखते हैं। कहा जाता है पीछे मुड़कर नहीं देखो, भक्ति में भी कहते हैं आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं अच्छे रास्ते की, पीछे से आवाजें आएंगी रुक जा तेरे से नहीं हो सकेगा, देख ले हम तेरे साथ हैं वापस आ जा। तो कोई व्यक्ति पीछे देखे तो नहीं पहुंच सकता। तो बाबा ने हमको पहली बिंदी यही बताई हुई है कि बीती को बीती देखो, और उसी बिंदी की शक्ति यही है कि हम अपनी पीछे की कमी कमजोरियां पीछे जो हमने नहीं कर पाए उसका ध्यान करने से हमारी शक्ति घटती है। इसलिए बाबा ने कहा है बीती को बीती देखो, पहली बिंदी तो यही है। इसलिए बाबा कहता है फिर अकेले अपनी ताकत से उड़ने की कोशिश नहीं करो, परमात्मा हमें उड़ा रहा है, परमात्मा ने हमें उस पार ले जाना है, हम निमित्त बन के उसकी श्रीमत पे चाहे छोटी हो या बड़ी हो चलते रहे। मैं यही समाप्त करता हूँ।